जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव
कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञान स्मिरन्नस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं
सावधूतं परिचलासहितम्
श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त
राधाकान्तानुमोस्तुते।
सप्तकञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्रीकृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासवि गौरवस्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण
हरे
कृष्ण। कल
हमारे में से कई भक्तों ने
श्री
गिरिराज की परिक्रमा की पूजा की। कितनों ने कल किए थे हाथ ऊपर करने के लिए?
Many of you are performing a kirtan of coughing.
आप में से कई खांसी का कीर्तन एक साथ मिलकर खांसी करना, जो कि एक लक्षण कि आपकी परिक्रमा अच्छी हुई है।
unlimited glory of Krishna.
कृष्ण की असीमित महिमा वो गोवर्धन पर्वत की महिमा से अभिन्न है. जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर सबसे ऊंचे लोक आध्यात्मिक धाम से प्रकट गोलोक से भगवान श्री कृष्ण प्रकट, उसी प्रकार से यमुना देवी और वृंदावन धाम और गिरिराज गोवर्धन भी प्रकट हुए. गर्ग संहिता में वहाँ पर एक सुंदर कथा बताई गई है कि कैसे गोवर्धन पर्वत आध्यात्मिक जगत से कैसे प्रकट हुआ. हाँ, ये निश्चित है आध्यात्मिक धाम में सब कुछ शाश्वत है, इसकी कोई शुरुआत भी नहीं और उसका अंत भी नहीं है. लेकिन लीला के लिए एक अचिंत्य विभक्त है, सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए, जो कि एक ही उद्देश्य के लिए है, जो कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य, जिससे कि श्री कृष्ण परम सत्य जो है अपने अपने लादिनी शक्ति के साथ प्रेम का आदान प्रदान करे और उनके अनंत अंशों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सके. इसलिए हर एक अंश जो है तो कृष्ण के प्रेम का आस्वादन करने का अवसर मिले. और उनको फिर अन करें. ये दुनिया जो है आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है. यहाँ पर लोग ये भूल जाते हैं कि सब जो परमात्मा जो है वही सब प्रेम के विषय हैं. वे रास बिहारी हैं, वे श्री कृष्ण. हम सुख की तलाश में रहते हैं. इस दुनिया के क्षणिक चीजों में हम सुख की तलाश करते रहते हैं, इस दुनिया में लगे रहते
हैं
और फिर हम उससे हमेशा निराश हो जाते हैं. कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, आ ब्रह्मा भुवना लोक पुनरावृत्ति निर्जित मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. इस भौतिक दुनिया में सबसे ऊंचे लोक से लेकर सबसे निम्न तक वे सब सब दुखों के स्थान है, क्योंकि हर एक चीज क्षणिक है. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन. हम चाहे कुछ भी हों, हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से गुजरना ही पड़ता है. कृष्ण रचयिता के रूप में समझा रहे हैं. हमें बहुत सारे दार्शनिक कवि हो सकते, बड़े दार्शनिक संत जो बड़े विद्वान, हम लाखों किताबें भी लिख सकते, वैज्ञानिक भी, जैसे कैसे दुनिया की रचना कार्य कर रही, लेकिन वास्तव में अचिंत्य है. ये अचिंत्य है. और ये अचिंत्य क्यों है? क्योंकि ये कृष्ण का प्रकट स्वरूप है जो कि अचिंत्य है. ओम पूर्णमेदा पूर्णमेदा. ये भौतिक दुनिया जो है इसका जो स्रोत यह है वो कृष्ण है.
And Krishna's Maya is ruling over this material existence.
और कृष्ण की माया जो भौतिक जगत पे अपना अपना प्रभाव जमाई है, देवी ऐसे गुणमय, ये जो माया शक्ति है ये कृष्ण की शक्ति है और ये सर्वशक्तिमान है। तो श्रील प्रभुपाद बड़े गंभीरता से बता रहे हैं, बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर हम वास्तव में भौतिक अस्तित्वों के दुखों से पार जाना चाहें, हम मृत्यु से परे अगर जाना चाहते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो सारे ज्ञानों के स्रोत है उससे, वेदस्य सर्वैर अहम् एव वेद्य। कृष्ण जी सारे वेदों का रचयिता मैं हूँ, सारे वेदांत का जानने वाला मैं कौन, सारे वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। कृष्ण जानते हैं हर एक कैसे उनका अस्तित्व कार्य कर रहा है, उसका हर एक पहलू कृष्ण को पता है। वेदहम समतितानि वर्तमानानि च चार्जुन, कृष्ण सब कुछ जानते हैं, जो कभी भविष्य वर्तमान में सब कुछ जो भी हुआ वो कृष्ण को, पूरे सृष्टि में जो भी हुआ कृष्ण को पता है, जो अभी हो रहा है वो भी पता है, वो हर एक शब्द को सुनते हैं, वो हर एक विचार को भी सुनते हैं, वो हर एक क्रिया को भी देख, हर एक पेड़ हर एक पौधे के, उनको पता है कि कैसे पत्थर और कैसे रेती का दाना कैसे कार्य कर या नहीं कर रहा, वो पता है। कृष्ण सभी कुछ जानते हैं, वो हर एक कण कण में है। और उसके अलावा कोई और कुछ हो नहीं सकता जब तक कि अगर वो भगवान की शक्ति से बिना कुछ हो भी नहीं सकता। जब श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में कहते कि कैसे भौतिक अस्तित्व कार्य करते, ये किसी और का मत नहीं है, ये दुनिया के रचयिता का वाक्य है और इसीलिए उनके शब्द जो है परम सत्य, क्योंकि वो परम है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कृष्ण परम ईश्वर है, सारे ईश्वरों के ईश्वर है। उनके तीन शाश्वत पहलू, एक तो निर्विशेष ब्रह्म है जो ये अंतिम स्थान है, जो मुक्ति में रुचि लेते हैं वही परमात्मा है, जो सबके हृदय में स्थित है, हमारे अंतिम मित्र के रूप में और भगवान के रूप में, जिनका शरीर सच्चित और आनंद है, शाश्वत है, आनंद से पूर्ण, ज्ञान से पूर्ण, जो कि आध्यात्मिक धाम में रहते हैं। सब जीवात्माओं को बुला रहे हैं, अपनी सुंदर लीलाओं में आकर्षित कर रहे हैं। कृष्ण का मतलब आकर्षण, न का मतलब है अनंत, इसका मतलब कृष्ण अनंत रूप से आकर्षक है। जितना हम अगर हम एक बूंद भी अनुभव करते हैं, अस्तित्व का अनुभव करते हैं, इस दुनिया के बड़े से बड़े सुख भी यमुनाचार्य, जिन चीजों में हम बड़े आकर्षित रहते हैं, उससे जो है मेरे को थूक आ जाती है। वो थूकने का अर्थ क्या है? एक लोगों के ऊपर नहीं, वो जो मिथ्या अहंकार है कि मैं भोगता हूँ, क्योंकि यह स्वामी बनने की इच्छा है वो सब दुखों का कारण कृष्ण गीता में बतलाते हैं। अगर हम ये तीन सिद्धांत को समझते हैं तो हमेशा सुखी रह सकते हैं कि कृष्ण सब चीजों के स्वामी कृष्ण हैं। हमारा सबसे बड़ा पूर्णता है कि हर एक चीज को जो भी हमारे पास हो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उपयोग करें, और ये जानना हर एक स्थिति में कृष्ण हमारे मित्र हैं, हमेशा हमारे हितैषी हैं। जैसे कृष्ण सर्व आकर्षक है गोलोक वृंदावन में, उनके आनंद में शक्ति श्रीमती राधा रानी वो भी सर्व आकर्षक है, वो कृष्ण के लिए आकर्षण के स्रोत हैं। राधा और कृष्ण और गोपी एक साथ बैठे हुए थे गोलोक वृंदावन में। मैं ये कहानी बताने से पहले एक और दार्शनिक सत्य है। प्रभुपाद जी ने बताया एक आध्यात्मिक धाम का एक पहलू है कि समय वहाँ पर नहीं होता। आध्यात्मिक धाम में समय का प्रभाव नहीं होता, लेकिन हम पढ़ते हैं शास्त्र में पढ़ते हैं कि कैसे यशोदा माया कृष्ण के लिए इंतजार कर रहे हैं, नंद बाबा के तरह सारे गोपियों के तरह वो कृष्ण गाय चराने जा रहे हैं। जब कृष्ण गोपियों के साथ कि गाय और बछड़ी वो इंतजार कर रहे हैं कि जब सूर्योदय होगा जब कृष्ण मिलेंगे सब गोपियों के साथ लीला करेंगे। जब हम शब्द का उपयोग करते हैं कि कब, समय जो है समय का अनुपस्थिति कहा गया, क्योंकि अध्यात्म ध्यान का समय जो है वो यहाँ का भगवान के धाम का समय भी योगमाया के अधीन काम कर रहे हैं। इस भौतिक दुनिया में कृष्ण ने समय बतलाया, गीता को उन्होंने समय के रूप में बताया जब विराट स्वरूप के रूप में दिखाया, और अर्जुन ने देखा कि सब कुछ जिस विराट स्वरूप द्वारा सब कुछ खाया जा रहा है। कृष्ण ने कहा कि मैं ही काल हूँ, काल के प्रभाव से, और हमारे लिए हमारी क्षुद्रता के कारण जब मैं लेक्चर देता हूँ तो लगता है बहुत समय हो गया, हालांकि 2 ही घंटे। लेकिन सत्य यह है कि बड़े बड़े हिमालय पर्वत, बड़े बड़े पर्वत बीज हैं, कुछ ही समय में सब कुछ पाउडर बन जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बड़े बड़े सागर, ये जो बड़े बड़े सागर है, हिंद महासागर है, अरबी सागर, वो सब सूख जाएंगे। सूर्य भी बंद हो जाएगा, सारे ब्रह्मांड के सारे लोक अप्रकट हो जाएं।
Now, from the absolute perspective,
अगर ऊंचे स्तर पर देखा जाए ऐसे ये सब कई बार होते हैं, जब कृष्ण श्वास अंदर लेते और बाहर लेते महाविष्णु के रूप। लेकिन भगवान के धाम में सब कुछ शाश्वत है, सब कुछ ज्ञान से पूर्ण, सब कुछ आनंद से पूर्ण है। काल का यह योग माया की एक शक्ति है, वो इसलिए है क्योंकि प्रेम के रिश्तों का आस्वादन करने के लिए कृष्ण और भक्तों का, और भक्तों का दूसरे भक्तों के साथ। एक दिन राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की तरफ गोलोक वृंदावन में रानी कृष्ण से कहने लगे, मेरे प्रिय श्याम सुंदर, अगर आप मेरे प्रेम से प्रसन्न हैं और गोपियों के प्रेम से, आप इस वृंदावन के सुंदरता से प्रसन्न, हमारी रासलीला से अगर प्रसन्न हो, मेरी एक इच्छा है श्री कृष्ण भगवान मुस्कराए और बोले, जो भी आप इच्छा करेंगे वो मेरे जीवन का प्रेम है। श्री राधारण ने जवाब दिया, हमारी ये इच्छा है कि आप एक ऐसी सुंदर सुंदर स्थान बनाओ हमारी लीला को निर्माण करने के लिए। श्री चैतन्य चरितामृत से हम समझते हैं राधारानी और गोपियां जब इच्छा को प्रकट करते हैं, उनकी जो इच्छा है वो कृष्ण की प्रसन्नता है। अपने आप को सुंदर बनाते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। वो इसलिए सुखी हैं क्योंकि उससे कृष्ण सुखी होते हैं। कभी कभी विरह में वो रोते हैं कि उससे भी कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि जो भी करते हैं वो उनके प्रेम का एक प्रकट स्वरूप है। तो कृपया ऐसे एक बहुत परम सुंदर स्थान बनाओ जिससे कि हम अपनी लीला कर सकें। श्री कृष्ण ने मुस्कुराया और कहा, ऐसा ही हो। और वो अपना ध्यान जो है पूरा ध्यान अपने हृदय के अंदर केंद्रित किया, उन्होंने ध्यान लगाया अपने प्रेम के सार पर, ध्यान किया और वह प्रेम जो है प्रकट हुआ कृष्ण के हृदय से, प्रकट एक बीज के रूप में आया। ऐसा लगा कि वह जल और अग्नि से बना हुआ, और वह बीज जो है जमीन के अंदर पहुंचा जहां पर रासलीला होने वाली थी, और श्रीमती राधा रानी कृष्ण के उपस्थित सारे गोपियों के समस्थिति में वो बीज जो है धीरे धीरे उगने लगा। और कुछ क्षणों में वो और बड़ा हो गया, एक सुंदर पर्वत के रूप में प्रकट हुआ जिसमें कल्पवृक्ष पेड़ लाखों संख्या में, और हर एक पेड़ बहुत सुंदर फूल और फल प्रकट हो रहे थे। झरने बह रहे थे, सरोवर थे, और पक्षी थे जो गा रहे थे। और सबसे बड़ा आनंद हुआ राधा गोपीनाथ और कृष्ण राधा रानी को ले गए और गोपियों के पीछे गए। ये जो पर्वत है ये कृष्ण के प्रेम का प्रकट स्वरूप है और वो है गोवर्धन पर्वत, वो है आध्यात्मिक धाम में गिरिराज गोवर्धन। हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि कृष्ण ने ब्रह्मा जी को वचन दिया था कि मैं इस भौतिक दुनिया में प्रकट होऊंगा, यदा यदा ही धर्म से ग्लाने भवति भारत विथानम धर्म से आत्मान से जाम में हूँ। कृष्ण ने राधा रानी को प्रकट किया कि आध्यात्मिक जगत में जिसमें कि जब वो आने वाले थे और वो चाहते थे कि राधा रानी भी नीचे है तो अपनी लीलाओं को प्रकट करना। सबसे ज्यादा प्रकट रूप आध्यात्मिक साक्षात्कार के प्रेम भक्ति के ब्रह्मा जी के दिन में एक बार, यानी 8,640,000,000 साल, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन है उसमें एक बार राधा और कृष्ण प्रकट करते हैं अपनी लीला को। बहुत विशेष है। श्री राधा रानी ने कृष्ण को बताया मुझे ज्यादा सुख का अनुभव नहीं होगा अगर वृंदावन वन नहीं है, अगर यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत नहीं है। ये कृष्ण के बहुत ही सुंदर बहुत प्रिय स्थान है और इसलिए राधा रानी का प्रिय स्थान है, राधा रानी को प्रिय है और इसलिए ये स्थान जो है ज्यादा से ज्यादा राधा और कृष्ण गोपीनाथ को ज्यादा प्रसन्नता देने वाला। कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को बताया कि वृंदावन यमुना नदी और गोवर्धन पर्वत पहले से इस दुनिया में आ चुके हैं, ये आपकी लीला में प्रकट हो गया है। पुराणों में बताया गया गिरिराज कैसे गोलोक से धरती पर कैसे आए, भारतवर्ष के पश्चिम दिशा में वो द्रोणाचल के पुत्र, और जब वो प्रकट हुए हर एक पर्वत वो पूरे ब्रह्मांड सबने समझ गए ये पर्वत ये गोलोक वृंदावन से प्रकट हुआ पर्वत है और सबने गोवर्धन पर्वत की पूजा की, गोवर्धन के परिक्रमा की और स्वीकार किए गोविंद गोवर्धन जो सारे पर्वतों का राजा है गिरिराज। अलग अलग राजाओं हो सकते हैं पर्वत के, गिरिराज सारे राजाओं के भी राजा है क्योंकि वो कृष्ण से अभिन्न है और साथ साथ कृष्ण को सबसे प्रसन्नता प्रदान करने वाले भी वही है। ये बहुत सालों पहले हुआ था सत्ययुग में, पुलस्त्य मुनि जो बड़े ऋषि थे तिमलद्वीप के पास गए और वहां पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत की सुंदरता को देखा और उनको ऐसा लगा इतनी सुख अनुभव हुआ। उन्होंने द्रोणाचल से पूछा कि मैं तुम्हारे पुत्र को मेरे साथ लेने चाहता हूँ, मैं यात्रा कर रहा हूँ पूरे दुनिया में यात्रा कर रहा हूँ और मेरे निवास स्थान काशी, यहाँ पर गंगा नदी भी बहती है, मैं गोवर्धन पर्वत को अपने साथ ले जाता हूँ और उसी के ऊपर मैं अपना ध्यान करना चाहता हूँ। ऐसा है कि जैसे विश्वामित्र मुनि राम के लिए मांग, द्रोणाचल सोचने लगे कि मैं बेटे को कैसे कर सकता हूँ, जो मेरे प्राणों से भी ज्यादा मेरे को प्रिय है, और इसके साथ साथ वो इतने महान ऋषि को अपमान भी नहीं करना चाहते। तो गोवर्धन ने समझ गए इस दुनिया में उनका क्या तात्पर्य, वो था कि ब्रज भूमि में आना। तो उन्होंने अपनी योजना बनाई, उन्होंने कहा कि मेरा पिता कि मैं जाना चाहता हूँ इस ऋषि के साथ, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को कैसे लेकर जाओ। पुलस से बोले कि मैं अपने योगिक शक्ति से दाएं हाथ पे आपको धारण करूंगा। और उस समय गोवर्धन बहुत ऊंचे स्तर का था, गोवर्धन ने कहा मैं आपके साथ जाऊंगा, एक शर्त यह है कि अगर कहीं पर भी आप मुझे नीचे रखोगे बस मैं वहीं पर रहूंगा। पुलस से मुझे बोले ये ठीक है, ये स्वीकार, और गिरिराज को उठाया और अपने योगिक शक्ति से वो आकाश में उड़ते हुए आए और समूली देश से आए। जब वो ब्रज भूमि के ऊपर जा रहे थे, गिरिराज जो सारे राजाओं के राजा, वो सोचने लगे ये मेरा शाश्वत निवास स्थान है। वो बहुत भारी बन गए। पुलस्त्य मुनि को जमीन पर आना पड़ा, गिरिराज को ऊपर रखा था। और फिर कृष्ण की अचिंत्य व्यवहार से कृष्ण जो है सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते, इतने सरल तरीके से कर। अचानक कृष्ण के व्यवहार जो सारे ईश्वरों के ईश्वर हैं, पुलस्त्य मुनि को शौच क्रिया के लिए जाना पड़ा। आप हम सब जानते हैं कि वो क्या हो सकता है, वो तो बड़े योगी हैं, उनको पता है कैसे सब चीजों को वश में किया जा सके योगी शक्तियों से। लेकिन कृष्ण योगेश्वर है, वह सारे योगियों के स्वामी, किसी भी योगी को वश में कर सकते हैं। लेकिन किसी तरीके से अचानक उनको शौच क्रिया के लिए जाना था, अपनी बुद्धि को खो बैठे, उसी पर उन्होंने गोवर्धन को नीचे रखा और वो गए हाथ धोकर आए और लौट कर आए और गोवर्धन को उठाने के लिए गए और गोवर्धन हिला ही नहीं, वो भूल गए। सर्वस्य चाहम विद्धि सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञान मपोहनम। कृष्ण गीता में बताते हैं कि याद करने की शक्ति, ज्ञान और भूल जाने की शक्ति मेरे से आती है, और इस केस में कृष्ण स्वयं को भूल गए। जब कृष्ण चाहते हैं कि आप भूल जाए तो पता नहीं चलता कितने आपके ब्रेन सेल हो गए, तो कुछ भी याद नहीं रहता। कृष्ण अगर चाहते हैं कोई याद करे, अगर ब्रेन आपको दिमाग नहीं भी हो, अगर आप ICU में भी हैं और ब्रेन हैमरेज भी, आप कोमा में भी हो, और कृष्ण अगर चाहते हैं कि आप याद कर, तो आप उनके लीलाओं को, वृंदावन की लीला को याद करें। आप सब सोच रहे हैं मेरा प्रिय वन प्रिय व्यक्ति को क्या हो रहा है, रो रहे होंगे, लेकिन आप लीलाएं देख रहे हो। पुष्टि मार्ग यानी दया का मार्ग, भक्ति जो है दया का मार्ग है। अगर कृष्ण हमारी सेवा भावना से प्रसन्न है, हमारे प्रयास से अगर कृष्ण प्रसन्न, जिसके दो उंगली का हम वर्णन कर रहे हैं कि अगर हम जस्ट सेवा करते हैं सच्चे प्रामाणिकता के साथ, उत्साह के साथ, सच्चे इरादे के साथ, तो कृष्ण की कृपा को हम आकर्षित करें, और वो कृपा ही हमारी एकमात्र योग्यता है। भक्त्यात्वनन्या शक्या अहम एव विदुर जन। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं फिर भक्ति के द्वारा ही मैं इसी रूप में देखा जा सकता हूँ जैसे आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रेमांजन चुरित भक्ति लोचनेन, जब हमारे आंखों में प्रेम का भक्ति का अंजन लगा है तो अपने आप को कृष्ण प्रकट करते हैं। तो इस अचिंत्य लीला में सारे पर्वतों के राज जो कि आध्यात्मिक धाम से धरती पर आए थे उसको ब्रजभूमि में स्थान मिला कृष्ण की इस अचिंत्य लीला के द्वारा। पुलस्त्य मुनि, उनके हृदय में कृष्ण है, वो थोड़ी देर के लिए क्रोधित हो गए, उन्होंने गोवर्धन को शाप दे दिया क्योंकि तुम्हें सब काशी नहीं चल रही, मैं तुमको शाप देता हूँ कि हर दिन आपका कद जो है एक राई के दाने के समान कम होता जाएगा, जितना राई का दाना है उतना साइज कम हो जाएगा। हमारे लिए राई का दाना ज्यादा नहीं, लेकिन लाखों लाखों करोड़ों लोग सालों के बाद सोच रहे हैं ये कृष्ण का इंतजाम था। ये सत्य युग में है, कृष्ण द्वापर युग में आने वाले थे। गोवर्धन पर्वत जो है बहुत 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 बड़ा ऊंचा था, इसलिए लीला नहीं हो सकते। उस समय जो गोवर्धन पर्वत उसका कद बहुत ऊंचा था, उसकी शिखाएं शिखर जो है पर्वतों के बादलों के ऊपर थे। तो पुलस्त्य मुनि कृष्ण की इच्छा से कार्य कर, और जब कृष्ण ने धरती पर आए तो गोवर्धन पर्वत बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, जिससे कि बछड़े ऊपर जा सके, गोपर गोपियां खेल सके। और गिरिराज इंतजार कर रहे थे। त्रेता युग आ गया, भगवान कृष्ण भगवान राम के रूप में आए। जैसे आप जानते हैं कि भगवान राम सीता लक्ष्मण उनको जंगल में भेजा गया था 14 वर्ष के लिए, और जब वो जीवित मुंबई से बाहर पुणे के पास में वो पंचवटी के पास रह रहे थे, शूर्पणखाई और सीता को देना चाहते, लक्ष्मण ने उनका नाक काट दिया, उसका नाम नासिक हो गया। ये कुंभ में चार कुंभ मेले का स्थान, यहाँ पर गोदावरी कपिला से एकत्र होते, नदी संगम होते, वो नासिक में रावण ने सीता का हरण किया और उसको श्रीलंका में लेकर आए। हनुमान जी ने उसको खोजा, सब सारे वानरों की मदद से उन्होंने एक बड़े ब्रिज बनाई जो कि 800 मील लंबी थी और 100 मील चौड़ा, रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका था। हम जाते हैं कि छोटे से गिलहरी भी कुछ रेती के दाने डाल रहे थे, भगवान राम उनकी सेवा को भी स्वीकार कर रहे थे, जितना कि हनुमान जी बड़े बड़े पर्वत लेकर जा रहे थे। हनुमान जी बड़े बड़े पर्वत ले जा रहे थे जो कि पर्वत जो है पानी में तैर रहे थे, और वो सब उत्साह थे, सब जगह पे जा रहे थे, सब पर्वतों को उठा रहे थे। वृंदावन ने हमें कहानी सुनी, हनुमान जी यहाँ पर आए वो गोवर्धन को उठाने के लिए, पर्वत उठा रहे थे हनुमान, गोवर्धन उतना बड़ा नहीं था जितना इतना भारी नहीं था, वो गोवर्धन को उठाने उठा ही नहीं सके। हनुमान जी समझ गए अपनी शुद्ध अपने प्रेम भक्ति के राम के प्रति, ये पवित्र पर्वत है, ये पूजनीय है, तुमने दंडवत प्रणाम किया। वो गिरिराज की पूजा करने लगा, प्रेम और भक्ति के उनसे अनुमति मांगी कि मेरे को परमिशन दो, मैं आपको उठा सकूं, मैं ब्रिज बना सकते राम और सीता को जोड़ सकूं। गोवर्धन ने कहा मैं अपने को हल्का बना दूं, आप मेरे को फिर ले जा सकते। जब जाने का समय हनुमान जी को आवाज सुनाई पड़ी और पर्वत की जरूरत नहीं, ब्रिज पूरी हो गई। गोवर्धन को बड़ा दुख लगा कि मैं श्री राम का दर्शन करना चाहता था, भगवान राम से मेरा हृदय बता। हनुमान जी वापस गए, ब्रिज सब होने के बाद वो गोवर्धन के पास लौट के भगवान राम का संदेश कि राम जो है अपने मूल स्वरूप में प्रकट होने वाले कृष्ण के रूप में वृंदावन में, और यहाँ पर आप उनकी घनिष्ठ लीलाओं में भाग लोगे, और राम जी की राधा और कृष्ण के लिए और सारे गोप और गोपियों के साथ। तो गोवर्धन गोवर्धन पूजा के दिन हमने चर्चा की थी कि कैसे कृष्ण ब्रजवासियों के श्रद्धा को प्रकट किया। हम बहुत ज्यादा बार नहीं समझा सकते, अपने छोटे बालक के स्वरूप 7 साल की उम्र में उन्होंने अपने उनके सबके जीवन पे एक रिस्क लागू किया, क्योंकि कई पीढ़ियों से इंद्र की पूजा हो रही थी, उनको बरसात की जरूरत, और ये जानना चाहिए कि उस जमाने में जो देवता हैं, लोग ये समझते थे कि उनको लोग देवताओं को व्यक्ति के रूप में देखते थे। आज किसी को बोल आप इसी देवता की पूजा मत कर, कुछ और करना, तो हम सोचते हैं कि हमें पता नहीं कि किसी ने बोला है कि देवता होते हैं, शायद होंगे, शायद वो यहाँ पर होंगे तो हमें पूजा कर। लोग ऐसे मतलब लोगों को पूरा विश्वास नहीं, लेकिन द्वापर युग में सब बड़े महान व्यक्ति थे, वो जानते थे कि सत्य है कि इंद्र जो है बरसात करते हैं। जब कृष्ण ने बोला इंद्र को भूल जाओ, ये तो हमारे कर्मों का फल है, ये सब पूजा का सामग्री लेकर ये सब गोवर्धन पर्वत को अर्पण कर दे और गायों को अर्पण कर दे, ब्राह्मणों को। ब्रजवासु अपनी एक अंतर स्थिति बता रहे, उनको जीवन या मृत्यु से कोई संबंध नहीं था, वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते, और इससे अगर कृष्ण प्रसन्न होते हम वही करेंगे और कोई दूसरा विचार ही नहीं है। अथा पुंभे द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग धर्म से धीर हरि तोषणम। सच्ची सफलता जो भी हमारे कर्तव्य हो, सच्ची सफलता है कि कृष्ण को प्रसन्न करने में। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और ये बहुत सरल तरीके नंद और यशोदा और सारे ब्रजवासियों ने कि सब धर्मों को त्याग करके और सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न कर, उनका ये पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है। इतना सुंदर था, बस उनसे प्रेम करते थे। इंद्र ने बरसात की और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया, लेकिन करने से पहले उन्होंने अपना बड़ा विशाल रूप देखा, एक बड़ा विशाल रूप धारण किया और बोले मैं गोवर्धन। और हम ये समझते सत्य में कि गिरिराज कृष्ण के स्वरूप, कृष्ण से बिल्कुल अभिन्न है, स्वयं प्रकट रूप है कृष्ण। हर एक गोवर्धन का पद एक शिला गुगली है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया, लेकिन हम इसको साधारण नहीं समझ सकते। ऐसे हमको शिला को उठाकर और अपने साथ घर में नहीं ले जा सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी गोवर्धन शिला रघुनाथ दास गोस्वामी को सौंपे, जो कि प्रयोजन आचार्य हैं। ये सबसे बड़ी सेवा है जो शुद्ध प्रेम भाव से की गई। गोवर्धन से एक शिला गोवर्धन से ले जाए वास्तव में अपराध है, जब तक कि हमें अगर हमें आशीर्वाद नहीं मिले गुरु से, आशीर्वाद के साथ एक भेंट के रूप में अगर दिया जाए तो ले जा सकते। तो कृपया ये कोई सोवेनियर नहीं है जो आप साथ ले जा सकते। ये कृष्ण का शरीर आप अलग नहीं कर सकते, अनुमति और आज्ञा के बिना नहीं ले जा सकते, महापुरुषों के आशीर्वाद के बिना नहीं ले जा सकते। श्रीमती राधा रानी श्रीमद् भागवतम में वो कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत हरिदास वर्य है। परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज ने बताया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया, कुछ दिनों बाद बताया। सार में शास्त्र में बताया गया हरिदास वर्य का मतलब सबसे महान, कृष्ण के सबसे महान भक्त। श्री चैतन्य महाप्रभु वो कृष्ण है जो राधा रानी के भाव में है। कृष्ण जो अपने परम भक्त का रोल खेल रहे हैं उनके प्रेम का आस्वादन करने के लिए, और साथ में ये महाधन्य कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरति से नम चैतन्य महाप्रभु का संदेह चैतन्य मनोभीष्टम। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को गले लगाया, उनकी नम्रता उनकी भक्ति को देखकर, तो वास्तव में उन्होंने रूप गोस्वामी के हृदय में अपने प्रेम से उनको शक्ति प्रदान की, वशी राधा रानी के प्रेम से शक्ति प्रदान की। और रूप गोस्वामी बता रहे हैं सारे अवतारों में भगवान चैतन्य महाप्रभु सबसे ज्यादा उदार है, जो कि वो मूर्तिमान स्वरूप है, वितरण कर रहे हैं गोपियों के, वृंदावन की गोपियों का प्रेम इस कलयुग में सबसे ज्यादा पतित लोगों को भी कृपा बांट रहे हैं। वे पतित पावन, पतित पावन हेतु तब अवतार, वो अवतार है जो सबसे अधम का बिगड़े सबको सबसे ऊंची चीज प्रदान कर रहे हैं। श्री चैतन्य हम अपने भक्त का रोल खेल, उसी तरीके से गोवर्धन जो स्वयं कृष्ण है वो भी एक भक्त का रोल खेल है। और कौन जानते कैसे भक्त, सबसे परम श्रेष्ठ भक्त कैसे हुआ, श्रीमती राधा से बढ़कर कौन जानता है कि भक्त कौन। और श्रीमती राधा रानी स्वयं श्री भागवत में कह रहे हैं, उसका नाम नहीं बताया गया लेकिन आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी और भक्ति विनोद और विष्णुचक ठाकुर ये सब आचार्य सब बताते हैं कि ये श्रीमती राधा रानी है बोल रही है ये श्लोक। अब सारे भक्तों में गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उनका पूरा अस्तित्व जो है कृष्ण को प्रसन्न करने का, और कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रसन्नता किससे मिलती है, उनके भक्तों को प्रसन्न कर। भक्ति जो है सब यहाँ पर कृष्ण गायों से प्रेम करते और गाय कृष्ण से प्रेम करते। सवेरे के समय गाय कुछ दूध नहीं तब तक कृष्ण नहीं आते, वो कृष्ण के आने के लिए इंतजार कर रहे। जब कृष्ण आते अपने गायों के आवाज में वो कृष्ण का नाम गा रहे और फिर वो अनंत दूध देते, अमृत प्रदान करते। गोवर्धन पर्वत सेवा के भाव से उनके बाल खड़े हो रहे हैं, वो अनंत घास के रूप में हर एक तिनका जो हर एक ब्लेड जो है बिना किसी फर्क समझना चाहिए कि गिरिराज परम व्यक्ति वो एक भाव में है, दासों के दास भाव में। हर एक जो घास का तेल का जो है वो जो है बहुत अच्छे तरीके से अर्पण किया जा रहा है सुगंध के रूप में। मतलब है कि बहुत ही सुंदर सुगंध है उसमें, इतनी सुगंध है कि गाय जब उसके सुगंध को सूंघते हैं तो प्रेम से पागल हो जाए। और सुकोमल है इसका मतलब हर एक घास का तिनका जो है वो एक विशेष अर्पण है, इतना नर्म है उसका टेस्ट भी अच्छा है, इतना सुंदर लगता है मुंह में भी, गायों के मुंह में इतना सुंदर लगता है। और बस वो खाते हैं बहुत खुशी से। आपने कईयों ने गायों का पालन किया, छह साल में न्यू अमेरिका में जो है गाय चराता था। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप एक लकड़ी लेकर वहां जाते थे जहाँ पर गाय चराने के लिए जाते, और कभी कभी घास बहुत सूखी होती जमीन पर, कभी कभी गाय को घास पे उतना मुश्किल हो जाता, कभी कभी चबाते उनको अच्छा नहीं लगता वो निकाल देते। गोवर्धन पर्वत पे जो हर एक घास का तिनका जो है ना वो इतना स्वादिष्ट इतना अच्छा लगता है गायों को, इतना नरम, इतना अमृतमय, इतना मिठास, इतना सुगंधित है। घाय जो भाव विवल वो नशे में, वो घास खाने में नशे में पूर्ण है। और ये पुष्टि वर्धन भी है, हर एक जो घास का तिनका है वो गायों को अच्छे स्वास्थ्य देने वाले, उत्साहित बनाने वाले और शक्तिशाली बनाने और प्रसन्न बनाने, हर एक गाय घास का तिनका दुग्ध संवक है। इसका मतलब उससे बहुत ही सुंदर दूध प्रकट होता है। और गाय जो गोवर्धन से आदान प्रदान कर ये घास को पीने के साथ वो इतने खुश होते हैं, उनका दूध और घास जो है वो तरल प्रेम के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं और वो पानी देते हैं अपने दूध से, जो है गाय घास को पानी प्रदान करते हैं। ये गिरिराज का अर्पण है। गोवर्धन की शिलाएं जो है गर्मी में वो ठंडे होते हैं और ठंडी में वो गर्म होते हैं। हर एक बछड़े, हर एक गाय, हर एक गोप, कृष्ण, बलराम, राधारण, जो भी उनके ऊपर पैर रखते हैं वो पत्थर बहुत कोमल हो जाता है, मक्खन की तरह। जिस कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करने के ये झरने, सरोवर, हमारे शास्त्र में बताते हैं जो देवताओं का अमृत है वो कुछ भी नहीं है स्वाद में गिरिराज गोवर्धन पे जो हर एक बूंद आते हैं। और जब गोप और गोपी जब गाय पीते, गोप पीते तो सब इतने सुख से प्रसन्न हो जाते क्योंकि गोवर्धन का प्रेम है, ये गोवर्धन के प्रेमानंद, ये उनके प्रेम के आंसू हैं सारे पानी। जब गोप पीते हैं तो वो धूल में लौटने लग जाते, वो गाने लगते हैं हरे कभी गोपियां गोवर्धन कितना भाग्यशाली कि अगर हमें कृष्ण को गले लगाने तो बहुत विशेष रूप से गिरिराज पूरे दिन गले लगाते हैं सुंदर सरोवर के रूप, सबके सामने वो गले मिल सकता है कृष्ण। और गोवर्धन की गुफाएं हैं वो बहुत सुंदर स्थान है, राधा रानी और कृष्ण और गोपियों के लिए उनका विश्राम करने के लिए। गिरिराज के सर सुंदर मणियां हैं और इस तरीके से बहुत सुंदर अच्छे तरीके से गिरिराज हैं, हर एक प्रकार का आनंद प्रदान करने के लिए, सारे कृष्ण के भक्त सुखी रहे उसके लिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है। हरिदास वर्य मतलब वो कृष्ण को सबसे प्रिय है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया गोपीर भरतुर पद कमलय दास 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 अनुदास। सबसे बड़ी अभिलाषा है श्री राधा रानी के भाव में वो है दासों के दासों के दासों के दास जो गोपियों के स्वामी हैं उनके दासों के दासों का दास मद भक्त्या पूजा दीपिका मान। कृष्ण बताते हैं कि मेरे भक्तों की पूजा करना मेरी पूजा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब श्रीमती राधारानी जब कह रही है कि गिरिराज हरिदास वर्य है वो भक्त जो कृष्ण सबसे ज्यादा प्रसन्नता प्रदान वो ये जान वो दुनिया को दिखाना चाहती है कि कृष्ण को प्रसन्न करने का अर्थ ये है तो अपना शरीर मन बुद्धि अपना पूरा जीवन अर्पण करना जिनसे कृष्ण प्रेम करते हैं उनकी सेवा कर दूसरों को कृष्ण के प्रति सुख प्रदान करने के लिए। गोवर्धन जो है ये दिखाने का प्रयास नहीं कर मैं दूसरों को ज्यादा प्रसन्नता दे रहा हूँ ये दिखाने के लिए नहीं है। गोवर्धन सबसे ज्यादा अधम सबके चरणों में स्थान ले रहे हैं उनको प्रसन्नता प्रदान करने जो कृष्ण को प्रसन्नता दे रहे हैं उनको प्रसन्नता देने जिससे दूसरे लोग कृष्ण को प्रसन्न कर सके उसकी सुविधा प्रदान करनी। जब कृष्ण देखते हैं कि वही हमारा वास्तविक सुख है कि दूसरे लोग कृष्ण को प्रसन्न करने तो इससे हम भी कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय बन सकते हैं। अगर हम दूसरों के सिर के ऊपर पैर रखें कृष्ण को प्रसन्न कर ले तो हम समझ नहीं पाते। गिरिराज वो चाहते हैं कि सब मेरे सिर के ऊपर चले जिससे वो कृष्ण को प्रसन्न कर सके इसलिए वो कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा संदेश मेरे भक्तों को पहुंचाते हैं और क्योंकि अंततः हर एक जीव कृष्ण का भक्त है तो ऐसे करने वाले व्यक्ति कृष्ण को बहुत प्रिय है। दूसरे लोगों को कृष्ण करीब ले आना और इसी में सुख प्राप्त करना है कि गिरिराज किस लिए प्रसन्नता है कि राधा और कृष्ण को नृत्य करते हुए देखना रासलीला करते हुए देखना देखना कि कैसे कृष्ण और बलराम गाय चर है कृष्ण को प्रेम से देख रहे और अपना दूध कृष्ण को दे और गोप जो है सुंदर गेम्स खेल रहे जल देन और कुछ शीला देन जिससे कि उसमें खेल सके इससे बड़ा सुख है। आप देखें अगर हम समझना चाहते हैं कि वृंदावन क्या है हमें इस सिद्धांत को समझना होगा। कृष्ण को कितनी प्रसन्नता प्राप्त होती है जिससे कि दूसरे कृष्ण को प्रसन्नता दे उसमें हम सुविधा प्रदान करें इससे हम कृष्ण को प्रिय भी बने। जैसे कैसे श्रील प्रभुपाद ने गुण प्रकट किए हम इस पर चर्चा कर रहे थे प्रभुपाद जी के तिरुभाव दिवस कितने सीनियर गुरु भाई गुरु बहन बता रहे थे जब कुछ लोग वृंदावन में थे गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे श्रील प्रभुपाद जी धरती की परिक्रमा कर रहे थे 11 बार जिससे कि दूसरों को कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदान करने के लिए हरिदास वर्य का ये व्रजभूमि का भाव है।
गोवर्धन
गोवर्धन में अनंत लीलाएं प्रकट होती और वो प्रेरणा प्रदान करते हैं महापुरुषों को, प्रेरणा देते जिससे उनकी महिमा का पूरे महिमा का गान पूरे दुनिया में कर सके। आपके अनुमति से अभी हम गोवर्धन की परिक्रमा पे लेकर जाए। कल आप में से कई गिरिराज जी की पूजा की परिक्रमा करते हुए, कईयों के लिए तपस्या रही, किसी के लिए भाव विवलता, किसी के लिए दोनों भी हो सकते हमारे साक्षात्कार के अनुसार। गिरिराज कृष्ण ये यथा माम प्रपादयन्ति ताम सदैव भजाम्यहम्। हमारी चेतना के अनुसार कृष्ण उसके साथ हमारे साथ वैसा ही आदान प्रदान करता। हम इस सब यात्रा में आए हैं नम्र सेवक के, नम्र भिक्षुक के रूप में। अगर आप सोचते हैं कि मैं महान हूँ, आपको वृंदावन में कोई स्थान नहीं है। रूप और सनातन जब वो चैतन्य महाप्रभु से पहली बार मिले वो कहने लगे कि हम सबसे अधम है, सबसे गिरे हुए, सब पतितों में गिरे हुए हम। वृंदावन के प्रति प्रेम या कृष्ण के प्रति प्रेम नाम के जप के द्वारा होता है, और धाम को प्राप्त करने के लिए विग्रह के रूप में प्रकट या पवित्र नाम के रूप में प्राप्त करने के हमें नम्रता का विकास करना चाहिए, क्षमाशीलता, और ये सीखना चाहिए कि कैसे हृदय से दूसरों का आदर करें। वृंदावन आने के सच्चे भाव से आना, सच्चा भाव है भिक्षुक के भाव में आना। हम कृष्ण को क्या दे सकते हैं? हम सिर्फ भीख मांग रहे कि कृष्ण मेरे प्रेम को स्वीकार कर। जब हम वृंदावन को आते हैं हमें सोचना नहीं चाहिए कि मैं आनंद प्राप्त करूंगा, हमें यह सोच करना चाहिए कि मैं शुद्ध हो जाऊंगा, ये भाव से आना चाहिए। मैंने आपको आने से पहले नहीं बताया क्योंकि मैं इससे पहले आपसे बात नहीं कर पाया। ये भाव है कि क्यों आते हैं, हम शुद्ध बनने के लिए आते हैं, और कभी कभी शुद्धकरण का मतलब कभी कभी आनंद होता है और कभी कभी वो कभी कभी दर्ददायक भी लगता है। क्या आप में से किसी का अनुभव यात्रा में हुआ कोई? आपकी खांसी से ही प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। अभी यहाँ पे 5,000 भक्त, हम सब 5,000, कभी बस में, कभी इधर जाना है, सब जगह जाए। अगर आपके साथ ये ऐसा हो रहा है तो जाना चाहिए। बहुत जल्दी शुद्धिकरण हो रहा है आपका मतलब, चाहे हम अकेले हैं वृंदावन में, अकेले चाहे हम 5,000 साथ हैं जलाइन में प्रसाद लेने के लिए, जो भी स्थिति हो, अगर हम कृष्ण का आश्रय लेते हैं, कि मैं आपसे प्रेम करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, तो आप फिर आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। इसीलिए हम वृंदावन में आए हैं। कल हम आप में से कई आपके चरण कमल से परिक्रमा की, कई बम्बई से, पुणे और लंदन, न्यूयॉर्क, सब आपको आदत नहीं होगी नंगे पैर चलने की, और हो सकता है वो तपस्या रही हो, लेकिन मैं श्लोक बताऊंगा एक ब्रजवासी ने लिखी है। वो ये कहते हैं, जब मैं वृंदावन में नंगे पैर चल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे लाखों गुना ज्यादा सुख मिलता है, जो सुख जो ब्रह्म में लीन होने का जो आनंद है उसे दस लाखों गुना ज्यादा सुख मिलता है, ब्रह्म साक्षात्कार से भी ज्यादा। हर समय जब कोई एक पवित्र कांटा जो है मेरे पैर में प्रवेश करता है, आप आशा है ये सुन के आपको सब्र मिल जाए। हर एक चीज हमारी दृष्टि के अनुसार होता है। श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण चित्त ठाकुर को कोट करते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी को काटता है तो बहुत दुख लगता है, लेकिन सन्यासी करने ज्यादा नहीं पता, लेकिन आचार्य बता रहे हैं अगर आपका प्रेमी आपको काट तो अच्छा लगता है। आप दांत की भावना नहीं देखते, आप प्रेम देखते। जब वृंदावन में दर्द होता है, अगर हम समझते हैं कि ये कृष्ण का प्रेम है मेरे को शुद्ध बनाने के लिए, अगर आप इस तरीके से देखते तते अनुकंपा सुसमीक्षा मानो भुंजान एवात्मा कृताप, अगर आप हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हो कृष्ण मैं आपका हूँ, तो आप सुखी हो जाते। अगर आप फिर भौतिक दृष्टि से देखते हो बिना कृष्ण के, तब शुद्ध हो रहे हैं, लेकिन आप एक अवसर खो रहे हैं और प्राप्त करने के। कृष्ण को धन्यवाद, जो भी अनुभव हो हमें कृष्ण वृंदावन, हमें कृष्ण की ओर मुड़ना है नम्रता के साथ, उनको धन्यवाद देना है, और हम नाम पुकारे उनका,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
आज हम परिक्रमा शुरुआत करेंगे शब्द ध्वनि के द्वारा, क्योंकि दिव्य ध्वनि जो है वो अभिन्न है जो शब्द ध्वनि का विषय है। जब हम कृष्ण का नाम पुकारते हैं तो कृष्ण हमारे जीवा के ऊपर नृत्य कर रहे थे, हमारे कानों में प्रवेश कर रहे थे, हृदय में। उसी तरीके से हरि कथा जो है कृष्ण के बारे जो कथा है वो कृष्ण से अभिन्न है। तो अगर हम परिक्रमा करते हैं सब अलग अलग पवित्र गिरिराज के, सब परिक्रमा हम साथ में कर रहे हैं, और आपके चरण कमल बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं, और साथ में खांसी भी चल रही है। मानसी गंगा शुरू करके रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर आप परिक्रमा कहीं से कर सकते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी कहते रिकमेंड करते हैं कि हम मानसी गंगा से शुरुआत करें, क्योंकि चैतन्य चरितामृत के अनुसार वहां से चैतन्य महाप्रभु ने परिक्रमा शुरू की थी। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में थे तो वो गोवर्धन धाम में आए और पहली शिला को उन्होंने लिखा, उनको आलिंगन किया और प्रेम के आंसुओं से भिगो दिया और वो मानसी गंगा में गए और फिर उन्होंने स्नान किया मानसी गंगा में। मानसी गंगा की इतिहास शुरू होता है, श्रीमद् भागवत से एक सुंदर कथा है। अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले गोकुल महावन के वर्णन में, कृष्ण को जब यशोदा मैया के प्रेम के रस्सी से बांधे गए थे तो उन्होंने एक उखल को लिया जिसे बांधा गया था और वो यमला अर्जुन पेड़ के बीच में से रेंगते हुए चले और पेड़ जो है गिर पड़े। वो एक बड़ा विध्वंस पैदा हो गया। उसके तुरंत बाद सारे जो मुख्य गोकुल के जो सब ग्वाल बाल एकत्र हुए, उपानंद जो सबसे बड़े भाई, नंद महाराज सबसे बड़े भाई थे जो कि प्रधानमंत्री भी थे, वो कहने लगे बड़े प्रेम के साथ। वो बोले कि महावन जो है अच्छी सुरक्षित स्थान नहीं है, बहुत सारे परेशानियां। पहले पूतना राक्षसी थी, फिर शकटासुर था, फिर तृणावर्त और हम ये देख रहे हैं ये बड़े बड़े पेड़ गिर रहे हैं और किसी भी क्षण कृष्ण का भगवान विष्णु की कृपा से उनकी रक्षा कीजिए। ये सुरक्षित स्थान नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमें वृंदावन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। और समझाया गया महावन और नंदगांव नंदेश्वर उसके बीच में इलाका है, इसको वृंदावन कहते हैं। तुरंत सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया। ये ब्रजवासी कैसा स्वभाव है, एक बोलता जाने के लिए बाकी सब सारे गाय सारे बछड़े सारे गोप सारे गोपियां निकल पड़ते, पूरा गांव निकल पड़ता। उन्होंने बैलगाड़ी भर दी, वो बूढ़ों को बैलगाड़ी में बताया और गाय बैलों को आगे रखा और यशोदा मैया और रोहिणी, कृष्ण उस समय सिर्फ 3.5 वर्ष के थे और बलराम जी उसी उम्र के थे और हर समय वे अपने बैलगाड़ी में चल रहे थे, लाखों गाय थे, सब कृष्ण के नाम पुकार रहे थे, कृष्ण की सुंदर लीलाएं बोल रहे थे। और जब वो वृंदावन वन में पहुंचे और विशेष मोहित हुए, गोवर्धन पर्वत देखकर भी मोहित हुए, यमुना की सुंदरता को देख सुंदर कल्पवृक्ष पेड़ दिखाई पड़ रहे थे। और कुछ ही समय बाद कृष्ण को बछड़ों की जिम्मेदारी दी गई। वो और उनके मित्र 4 वर्ष से कम उम्र के थे और श्रील प्रभुपाद ये समझाते एक बहुत सुंदर तात्पर्य में कि कैसे कृष्ण परम ईश्वर हैं, पूरे ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, लेकिन वृंदावन में वो गायों का ख्याल रखने के लिए गायों के ख्याल रखने के योग्य नहीं और फिर बच्चों की जिम्मेदारी। और कृष्ण और बलराम नंद यशोदा के पुत्र ब्रजराज और ब्रजरानी के फिर भी अपनी सेवा को करते हैं। कृष्ण और गोपी जो बलराम वो बाहर निकलते हर रोज और बहुत सारे बछड़ों को ले जाते और वो खेल रहे थे और वो खेलते हुए निकल पड़े और वो सुंदर पके हुए फल देखते वो इतने आकर्षित हो गए। कभी वो पत्थर को रस्सी से बांध देते पत्थर ऊपर देखते और वो और फिर रस्सी खींच लेते और वो फल खाते थे और उसमें से कुछ थे भागवत इतने एम इतने अच्छे थे वो पत्थर को लेके फ्रूट को काट देता और फ्रूट गिर जाता और वो सारे फल बड़े बढ़िया शाबाश और कभी कभी हमें अमालक की फ्रूट लेकर आते जो कि बॉल के समय और बहुत सारे बॉल गेम्स खेलते थे बेसबॉल फुटबॉल बास्केटबॉल और क्रिकेट और ये सब अमालक के बॉल के प्रतिबिंब रूप है जो गोप कृष्ण के साथ आध्यात्मिक धाम में खेलते हैं और वो दौड़ते और खेलते नकल करते अलग अलग पक्षियों के जानवरों की नकल करते। एक दिन एक असुर आया उसका नाम वत्सासुर था। वो इतना चालाक था इतना क्रूर था छोटे बछड़े का रूप धारण किया। उसका एकमात्र इरादा था कृष्ण बलराम को मारना।
Now what is more innocent and helpless looking than a cat?
एक बछड़े से बढ़कर क्या व्यक्ति क्या निर्दोष हो सकते। देखे बहुत सादे उनकी सुंदर आंखें होती हैं और वो आपकी तरफ देखते हैं इतने मासूमता से देखते
हैं।
और बछड़े वो आपके धोती और साड़ी को चाटने लगते हैं हर एक अपने माता के समान देखते हैं। ये बछड़े जो
है
कृष्ण बलराम के पीछे पीछे चल रहे कृष्ण बलराम जी को देखकर बताया ये जो निर्दोष जो मासूम बालक है एक बड़ा भयानक राक्षस है हमको मारने के लिए आए। कृष्ण और बलराम बहुत धीरे तरीके शांतता से उसके पीछे पीछे छोटे बालक वत्सासुर के अचानक ने कृष्ण उसको पीछे टांग से पकड़ लिया तो गोल गोल घुमाया उन्होंने तो गोल 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 पास घुमाते गए तेजी से जब बच्चा तो चक्कर आके उसकी मृत्यु हो गई।
वत्सासुर
का उदाहरण उसको भगवान ने फेंक दिया। वत्सासुर आकाश में उड़ रहा था और कृष्ण ने विशेष करके उसको ऐसा इसे निशाना लगा। एक कार्य से बहुत सारे कार्य करना चाहते कृष्ण ने देखा एक कपिता पेड़ है। कपिता के पेड़ जो है उसके फल बहुत ऊंचे होते हैं और कृष्ण जानते हैं कि गोप को कपिता फल बहुत अच्छे लगते हैं विष्णु ने शिव को फेंका. वत्सासुर एक कपिता फल के ऊपर पहुंचे और वो एक फिर उसने बड़ा विशाल राक्षस का रूप धारण कर लिया और सारे फल नीचे गिर गए और सारे गोप गोल ताली बजाते हुए खेलते ऊपर नीचे शाबाश शाबाश कहने लगे और देवता फूलों की बरसात कर रहे थे कृष्ण पर. सारे गोपों ने फलों का आस्वादन किया. भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं वर्षा सूर्य एक प्रतिनिधित्व करता है एक अनर्थ का, एक बालक जैसी मानवता, बालक जैसी मानसिकता जो कुसंग की तरफ जा सकते, जो हमें भक्ति के मार्ग से अलग ले जा सकते. कभी कभी जब कोई कोई चीज हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, हम उसका ध्यान नहीं देते. जब तक हमारे अंदर विवेक शक्ति नहीं है हम निर्दोष चीजों से गुमराह हो सकते हैं जो अंततः जो हमें पथ से विचलित कर सकते हैं. श्री प्रभुपाद जी ने हमें कई किताबें प्रदान की, जैसे कि हमने शशि नंदन स्वामी महाराज से सुना, वैश्विक प्रभु गिरिराज स्वामी महाराज से. श्री प्रभुपाद जी इस बात पे जोर दिया और अपना पूरा जीवन जो है सब कुछ अर्पण किया. सारे कृष्ण और सारे वैष्णव आचार्यों का ज्ञान उन्होंने पुस्तक में दिया और कितना महत्वपूर्ण है कि इन पुस्तकों को हम पढ़ें, जितनी हमारी योग्यता हो उसके अनुसार हम पढ़ें, जिससे कि हमें परम बुद्धि हो कि हम भेद कर सके क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है. इसका मतलब ये नहीं कि हम अनादर करें लोगों, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना चाहिए समझने के लिए क्या चीज हमारे शुद्ध भक्ति से हमारे मार्ग को अलग कर सकते. महत्से द्वार अहुर विमुक्ते समुद्वारम योषितम संग संग. भागवत के पांचवें स्कंद में बताया गया कि महात्माओं के संग से मुक्ति के दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन बिना किसी भेद के अगर संकेत, जिससे कि लोग जो बहुत भौतिक चीज से आसक्त हैं, इंद्र तृप्ति से अगर लोग ज्यादा आसक्त, बंधन के दरवाजे खोल सकते हैं. निष्कंचन से भगवत भजन से चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जो व्यक्ति संसारी लोगों का संग करना जहर के समान है. हम संग दे सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना चाहिए जिससे हम कि ये वत्सासुर जो है जो दिखने में बहुत निर्दोष लगते हैं, जो हमारे हृदय में जो है तकलीफ नहीं पैदा कर. निश्चित ही हमें कईयों को कार्य करना पड़ता, हमारे परिवार की जिम्मेदारी हम अलग अलग लोगों का करते हैं, लेकिन अगर हमारी साधना अच्छी हो, अगर साधुओं का संग हमें अच्छा मिलता है पवित्र लोगों के साथ और भेद की भावना रहती, अपने आप को शक्ति प्रदान कर. श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने से तो हम लोगों को ऊपर उठा सकते हैं और नीचे नहीं खींचे जाएंगे. वत्सासुर की तरह। हमें बालक की तरह होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसे बालक की तरह मूर्ख भी नहीं बनना चाहिए। लेकिन इसके बाद ग्वाल बाल कृष्ण से कहने लगे, हम आपके साथ नहीं खेल सकते क्योंकि आपने अपने एक बछड़े का हत्या किया। कृष्ण ने कहा कि बछड़ा जो असुर था, हम जानते हैं कि असुर है, लेकिन फिर भी बछड़ा था और आपको प्रायश्चित करना होगा। कृष्ण ने कहा मैं क्या करूं? बोले कि आपको गंगा में स्नान करना होगा। तो कृष्ण सोचने लगे कि मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं गंगा को यहाँ पर लेकर आऊंगा। कृष्ण ने अपने बैठे ध्यान किया अपने माइंड, अपने मन से उन्होंने, और उनके मन से गंगा माँ प्रकट हो गई और गोवर्धन के पास मानस गंगा प्रकट हुआ। वो गंगा जो है कृष्ण के मन से प्रकट हुई, इसको मानसी गंगा। कृष्ण ने मानसी गंगा में स्नान किया, सारे गोपों ने गंगा में स्नान किया, बछड़ों ने उन्होंने जल लिया और बहुत सुंदर स्थान बन गया वो स्थान, वो तरीका जिस तरह मानसी गंगा प्रकट हुई व्रज भूमि में, इस तरह से प्रकट हुई। एक दिन नंद महाराज और सारे ग्वाल बाल और गोपियों के साथ, और वो बोले थे ब्राह्मण को एक कथा सुना रहे थे, गंगा मैया की महिमा का गान कर रहे थे, और उन्होंने कहानी सुनी कि एक बार गरुड़ उन्होंने एक सांप को पकड़ा और अपने पंजे से पकड़ के, और वो सांप को ले जा रहे थे वो गंगा के ऊपर ले गए, और सांप की पूंछ ने जो है सांप की पूंछ ने गंगा जी को स्पर्श किया, और उसी क्षण वो सांप जो है वो चतुर्भुज रूप प्राप्त हो गया, वो आध्यात्मिक धाम का एक वासी बन गया। और गरुड़ जी ने देखा, गरुड़ जी इतने इतने भाव विवल हो गए, उन्होंने जो सांप था, जो पहले सांप था, उसको उसके आध्यात्मिक से अपने पीठ पर रखा और उसको ऊपर लेकर गए, नॉन स्टॉप फ्लाइट वैकुंठ ले गए। और सब नंद बाबा ये कहानी सुन के बोले कि हम भी गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे, ये बहुत पवित्र है। तो सब व्यवस्था करने लगे, गंगा वो बैलगाड़ी में सब सामान रखने लगे, सब पैकिंग करने लगे लंबी यात्रा के लिए। और कृष्ण ने कहा कि आप कहाँ पर जा रहे हैं? तो नंद महाराज बोला कि हम गंगा में जा रहे हैं स्नान करने के लिए। कृष्ण बोले कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, वृंदावन में सारे तीर्थ जो है वो पूरे ब्रह्मांड में जो है सारे वृंदावन में है, और गंगा भी यहीं पर है। और नंद महाराज बोले कि आप तो छोटे बालक हैं, आपको क्या पता है गंगा यहाँ पर कैसे, गंगा तो हिमालय में है। बोले नहीं नहीं, आपको समझना चाहिए कि कुछ भरोसा नहीं कर, चलो मेरे साथ चलो। और कृष्ण ने नंद और यशोदा को गोपियों को मानसी गंगा में लेकर गए, और उसी क्षण जो गंगा मैया की मूर्तिमान स्वरूप गंगा देवी वो प्रकट हुई मानसी गंगा पर, और वो एक मगरमच्छ के ऊपर बैठी हुई थी, और वो मुस्कुराई, और उन्होंने अपना अपना प्रणाम मंत्र प्रणाम कृष्ण को प्रणाम किया। और जब वो प्रणाम कर रहे थे कृष्ण को, सारे ब्रजवासी सारे सबको प्रणाम कर रहे थे, और वो समझ गए यही गंगा। लेकिन वृंदावन के वासियों के लिए वो गंगा से ज्यादा है, गंगा से भी ज्यादा है, गंगा भी है और मानसी गंगा है। न केवल हमें पापों से दूर करती है, क्योंकि वो कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई, वो कृष्ण के प्रेम से भरी हुई है, और वो हमें प्रेम प्रदान करती है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार कृष्ण के मानसी गंगा में बहुत सारी लीलाएं हुई। एक बार श्रीमती राधा रानी और जो उनके प्रमुख गोपियां थे वो दूध और दही अपने सिर के ऊपर लेकर जा रहे थे और उनको मानसी गंगा पार करनी थी और रात्रि का समय बहुत देर हो रहा था और एक पुरानी नौका थी और वो नाविक जो है अपने आप को ढका हुआ था बाद और वो कीमत पर चर्चा करने लगे और फिर निश्चय हुआ और श्रीमती राधारानी और गोपियां जो है नौका पर सवार जब मानसी गंगा के बीच में थे नाविक कहने लगा कि बहुत थका हुआ मैं बहुत भूखा हूँ मैं आगे नहीं बढ़ सकती और फिर उसने और कहने लगा कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया मक्खन अब मैं आगे नहीं चला सकता मेरे को आराम करने की जरूरत है और उन्होंने कहा कि मेरे शरीर का मसाज करो मेरे हाथ और पैर का और सब कहने लगे कि हम आपके आपको गंगा जी में फेंक देंगे आपको अगर आप हम नहीं जाएंगे तो वो आगे चलने लगा और फिर आगे चलने के बाद वो नौका चलने लगे ऐसे लगा कि नौका डूबने वाली है और बोला इसमें बहुत सारा वजन ज्यादा है हम डूबने वाले हैं तो हम क्या करें गोपी ने पूछा कि आपके सारे मटके जो दूध दही मक्खन जो भी है सब तो गंगा जी में फेंक दो गंगा माता को अर्पण कर दो नहीं तो हम डूब जाएंगे तो वो उसमें मानसी गंगा बहुत बहुत ज्यादा चौड़ी थी आशायद वो सब फेंक रहे थे और फिर थोड़े दिन के बाद कहने हम डूब रहे हैं अभी बहुत सारा वजन है आपके जो आभूषण हैं गले के माला ये सब फेंक दो फिर आचरण लगा और फिर कहने लगा कि अभी बहुत भारी हैं और गोपिया बोले हम क्या करें तो गोपे के आपके कपड़े लेकर वो फेंक दो और नाविक ने गोपिया ने कहा कि हम आपको फेंक देंगे तो नाविक फिर आगे चले गए और भगवान की योगिक शक्ति से अचानक बहुत बड़े बड़े बादल प्रकट हो गए आकाश में और जोर से तूफान आने लगा और नौका इधर उधर उधर जा रही थी आगे पीछे जा रही थी अंदर पानी भरने लगा और श्रीमती राधा रानी ने स्वाभाविक रूप से भगवान की लीला शक्ति से राधा रानी वो एकदम निशाय अवस्था में रह गए और कहने लगे कि हमें बचाओ और जैसे नाविक ने देखो कृष्ण को स्पर्श किया सारे बादल अप्रकट हो गए और बहुत सुंदर रात्रि चंद्रमा प्रकट हो गया और राधा रानी फिर पता चला कि वो नाविक कृष्ण और उसने कृष्ण अपनी मुरली बजा के दिखाई सब और पूरे रात्रि भर बहुत सुंदर नाव लीला हो रही थी जीव गोस्वामी के अनुसार मानसी गंगा में ये सब लीलाएं चलती रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्नान करने के पश्चात वो हरिदेव जी के मंदिर में गए। एक बार क्या हुआ था कि श्रीमती राधा रानी और गोपियां वो मानसी गंगा के तट के ऊपर थे और वो कृष्ण के मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे लेकिन कृष्ण उस समय आए नहीं और विरह में वो पुकारने लगे हरिदेव 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 पुकारने लगे बार बार पुकारने लगे और उनका विरह बढ़ता जा रहा था और जैसे वो गा रहे थे कृष्ण का नाम गा रहे थे ऐसा लग रहा था कि विरह के प्रेम को घी डाल रहे थे अग्नि बढ़ती जा रही थी जब तक वो स्तर पर आए जब मृत्यु के स्तर पे थे और पुकार रहे थे हरिदेव 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 पुकार रहे थे विरह में उनका प्रेम बढ़ने लगा उसी क्षण जो है कृष्ण प्रकट हुए हरिदेव के रूप में आए एक विग्रह के रूप में 7 साल के बालक जो कि गोवर्धन पर्वत धारण कर रहे थे और गोपियों ने उस विग्रह की पूजा की और हर रोज वो आकर आते उस विग्रह की पूजा करते थे। और बाद में उसी स्थान पर जहाँ पर लीला हुई थी, कृष्ण के जो प्रपौत्र वज्रनाभ ने वहाँ पर विग्रह की स्थापना की, हरिदेव के विग्रह की स्थापना की गई। श्री चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने परिक्रमा शुरू की, इस तरह से की, पहले मानसी गंगा में स्नान किया, फिर हरिदेव जी का दर्शन हुआ, फिर उसके बाद कई घंटों तक चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि वो हरिदेव गोवर्धनधारी के रूप को देख रहे थे और नृत्य कर रहे थे, भाव विवल होकर सब गांव के सब लोगों को आकर्षित कर रहे थे और सब जोर से गा रहे थे हरे चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म कुंड गए, जो मानसी गंगा के इलाके में ही है। ब्रह्म कुंड हमने चर्चा की, श्रीमद् भागवत की चर्चा की, जब कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत धारण किया और इंद्र के अभिमान को चूर चूर कर और सारे देवता अभिषेक अर्पण करने के लिए आए भगवान कृष्ण, और जो पानी है जिससे उन्होंने कृष्ण को स्नान कर, उससे अलग अलग 108 कुंड बन गए गोवर्धन पर्वत के, उसमें से कुछ अभी भी हैं। एक ब्रह्म कुंड जब ब्रह्मा जी ने स्नान कराया उसका जल, और एक वहाँ पर एक मूर्ति विग्रह है और देवी के, जो इस इलाके के ब्रज भूमि के पश्चिम दिशा के देवी, उसका नाम है मनसा देवी। वज्रनाभ ने चार देवी को चार दिशा में स्थापना की ब्रज के इलाके में, योगमाया देवी वृंदावन में, पथलेश्वरी मथुरा में है, वृंद देवी काम्यवन में, मनसी देवी गोवर्धन में, ये चार देवियां। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु भी बताया गया कि उन्होंने ब्रह्म कुंड के पास में विश्राम किया, अपनी परिक्रमा आगे करने से पहले वहां पर विश्राम किया था। मानसी गंगा के तट के ऊपर वहाँ पर चकलेश्वर महादेव का मंदिर है। वज्रनाभ ने पांच प्रमुख महादेव की पूजा की, जो शिव जी के रूप हैं, पांच अलग अलग इलाकों में वृंदावन के, जिससे गोपेश्वर महादेव वृंदावन में स्थापना किए, कामेश्वर महादेव काम्यवन में, भूतेश्वर महादेव मथुरा में, नंदेश्वर महादेव नंदग्राम में, चकलेश्वर महादेव गोवर्धन में। सनातन गोस्वामी उन्होंने अपनी भजन कोठी मानसी गंगा के तट के ऊपर, बिल्कुल चकलेश्वर महादेव के साइड में, वहां पर उन्होंने अपनी भजन कुटिया बनाई, और वहां पर है कि सनातन गोस्वामी वहीं से रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे और सूखी पत्तियां जलाते अपनी किताबों को लिखने के लिए, वो नाम का जप करते, पूर्ण मग्न थे, प्रेम में भक्ति में लगे हुए थे। बहुत सारे मच्छर आ रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, और सनातन गोस्वामी जो भक्ति के लिए अनुकूल है स्वीकार करते हैं, जो प्रतिकूल है ठुकरा देते हैं। तो उन्होंने निश्चय किया कि उनके पास क्वाइल ये कछुआ छाप वगैरह नहीं था उनके पास, तो मच्छर तो सोचे थे कि मैं छोड़कर चला जाऊं दूसरी जगह पर। तो उसी सवेरे चकलेश्वर महादेव वो ये विरह को सहन नहीं कर सके, चकलेश्वर महादेव सनातन गोस्वामी के पास ब्राह्मण के रूप में शिव जी आए और कहने लगे कि एक रात और रहो और मच्छर आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण का आदर करने के लिए सनातन गोस्वामी रुक गए और भगवान शिव जी उन्होंने सब जो मच्छरों के इंचार्ज देवता हैं उनको बुलाया कि कल से कोई मच्छर नहीं जाएगा वहां पर। सनातन गोस्वामी कई सालों तक वहीं पर रहे और वहीं पर रहे चकलेश्वर महादेव में है कि मानसा गंगा के पास में, ये सनातन गोस्वामी वहीं से उन्होंने अपना तिरोभाव भी वहीं से हुआ गुरु पूर्णिमा के दिन पर। और आज भी ये परंपरा है, ब्रजवासी मानते हैं कि वो वृंदावन के गुरु हैं, उनका प्रेम उनकी दया सबके प्रति है। एक और जगह मुखारविंद मंदिर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अनुसार जो गोवर्धन का मुख है और वहां पर हम कल वहां गए थे, हजारों लीटर दूध गिरिराज को अर्पण किया जाता है। उसके आगे दान घाटी आती
है।
ये बहुत प्रेम के बहुत सारे लीला हैं जो पुराणों में और जो हमारे आचार्यों के द्वारा प्रकट किए गए हैं। जब रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब ये सुंदर कथाओं को प्रकट करते हैं तो वो सिर्फ साक्षी दे रहे हैं जो वो देख रहे हैं उसको। प्रेमंजना चुरिता भक्ति विलोचने न, जब हमारी आंखों में प्रेम का अंजन लगा होता है तो कृष्ण ये सब लीलाओं को प्रकट करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष करके रूप और सनातन रघुनाथ दास को भेजा, छठ गोस्वामी को भेजा वृंदावन में, जिससे कि कृष्ण की घनिष्ठ दुनिया को प्रकट करने के लिए। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, वृंदावन की लीला को कौन ज्यादा जान सकता है, राधा और कृष्ण के सिवा कौन जान सकता है जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। और उन्होंने बहुत सुंदर और अपने आध्यात्मिक धाम से अपने पार्षदों को भेजा है जो कि दुनिया में आए, जो कि वृंदावन की लीला को प्रकट कर, पवित्र स्थानों को प्रकट कर, और साथ साथ उनके लेखन के द्वारा उनके उदाहरण से कैसे भगवान की कृपा को कैसे प्राप्त किया जाए, जिससे हम लीलाओं के साथ अपने आप को जोड़ सके, उनका साक्षात्कार कर सके और कृष्ण के अंदर प्रति प्रेम जो है उसका अनुभव कर सके। दाना के लिए कौमु दुखी में रूप गोस्वामी के द्वारा लिखे में बताया गया, बहुत सारी लीलाएं बताई गई जो दान घाटी में या कृष्ण वेदी में लीला है। वह बहुत ही छोटी सी सड़क थी जो कि दो पर्वत के बीच में से रास्ता है और कृष्ण ये लीलाएं करते थे गोपियों से, यह टैक्स एकत्र करते। कृष्ण के पास एक तोता था, राधा रानी को तोता था, और वृंदा देवी के बहुत सब सारे तोते हैं, उनको समाचार मिलते हैं। उनके पास सेल फोन नहीं थे उस जमाने, उनको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं, उनके पास पैसे थे। वो प्रेम के साथ वृंदा देवी वो सेंट्रल परम बीच में ईश्वर की तरह थे और सारे संदेश उनको मिलते हर क्षण पे दिए जाते बड़े प्रेम के तरीके से। कृष्ण रास्ते को रोक देते और प्रेम के प्रकट रूप से मजाक के द्वारा और तर्क वितर्क के द्वारा वृंदावन में हर एक चीज, हर एक शब्द, हर एक क्रिया, हर एक विचार वो एक शुद्ध प्रेम का प्रकट रूप है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं वहां से जहां से हमने परिक्रमा शुरू की, उसका नाम है दान निवर्तन कुंड। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब वो राधा कुंड में रहते थे, रूप गोस्वामी ने उनको एक किताब भेजी जिन्होंने लिखी थी, जिसका नाम था ललित माधव। और जब वो इन पुस्तक पढ़ रहे थे जिसमें विरह का वर्णन किया गया था, राधा और कृष्ण में कैसे विरह है, तो वो इतने इतने भाव विवल हो गए, राधा रानी की गहरी विरह की भावना, कि रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ खा भी नहीं सके। वो बहुत कम छाछ लेते थे और अब वो भी नहीं खा सके, वो बहुत पतले हो रहे थे, वो रो रहे थे। और सारे भक्त ने रूप गोस्वामी को पत्र लिखा और रूप गोस्वामी ने एक और किताब भेजी, दान के लिए चिंतामणि भेजी, जिसमें बताया गया कि कैसे राधा कृष्ण, राधा गोपीनाथ की सुंदर लीलाएं। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब पढ़ा तो वो हंसने लगे और रोने लगे, वो खुश हो गए, वो छाछ जो पीते थे वो पीने लगे। और एक बहुत सुंदर कहानी, एक यज्ञ हो रहा था, गोविंद कुंड में यज्ञ हो रहा था। जो कहानी इस प्रकार से थी कि जो भी कोई व्यक्ति जो एक घी का बर्तन अर्पण करता है यज्ञ में, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। और राधा रानी और गोपियों ने, उनके एक ही इच्छा थी कि कृष्ण की प्रसन्नता, पूर्णमासी की आज्ञा के अनुसार, योग माया देवी के अनुसार, श्री राधा रानी और उनके सारे गोपियां वो घी के भरे बर्तन लेकर जा रहे थे। और उस रास्ते में कृष्ण ने रास्ते को रोक दिया मधुमंगल और सुबाल और दूसरे गोपों के द्वारा। और कृष्ण ने कहा कि कई दिनों के लिए यहाँ पर आप ये सब चीजों को लेकर जा रहे थे, आपने कभी टैक्स नहीं भरा। जो प्रेम के जो स्वामी कामदेव ने मुझे भेजा है आपको टैक्स करने के लिए और हर एक गोपी के लिए, मुझे कुछ हीरे चाहिए हर एक गोपी के लिए, और श्री राधा रानी आपको एक्स्ट्रा टैक्स भरना होगा और आपके अपने शरीर के हर एक अंग के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी ज्यादा डिटेल में बताते, हर एक प्रकार के टैक्स का वर्णन करते और उनमें तर्क वितर्क होने लगा। ललिता सखी ने कहा आप हमको नहीं जाने थे तो हम जाकर कंस को जाके समाचार देंगे। और कृष्ण बोले एक दिन के तो मैं कंस को पकड़ के उसके आसन से नीचे उसको मार डालूंगा, मैं कंस को। और भविष्यवाणी थी, किसी ने गंभीरता से नहीं लिया।
And then Krishna said, all right.
फिर कृष्ण ने कहा ठीक हम ललिता सखी को यहाँ पर रखेंगे जिसे आप टैक्स भरने के लिए आओगे उसको बंदी बना के नंदी मुखी जो ब्राह्मण गोपी जो पूर्णमासी की शिष्य है वो प्रकट हुए और वो कृष्ण से कहने लगी वो टैक्स भरने लेकिन उनको जाने दो उनके उनके उनकी पतिव्रत्या को बनाए रखने के लिए उनको छोड़ दो वे जाने दो मैं आपको वचन देती हूँ कि कल इसी समय आएंगे टैक्स भरने के लिए कृष्ण ने स्वीकार किया फिर उसके बाद ललिता विशाखा और सब गोपियाँ सब एकत्रित हुए जो समय था उससे पहले एकत्रित और दान निवर्तन कुंड के पास एकत्रित जब कृष्ण और सबोल और मधुमंगल सब ग्वाल बाल आए हाथ में लकड़ी लेकर टैक्स कलेक्टर के रूप में सैकड़ों गोपियों ने उनको घेर लिया उनको पेड़ों से बांध दिया और बड़े प्रेम के शब्दों में उनको डांटने लगे और कृष्ण उनके प्रेम से जीत लिए गए ये समझ लो कि ये कृष्ण है उनका विश्व रूप में सब कुछ खा सकते हैं कृष्ण ने बड़े बड़े सेनाओं को पराजित कर दिया जरासंध के लेकिन गोपियों के लिए एक छोटे बालक की तरह मेरे को कृपया मत मारो और गोपियां कहने लगे कि वास्तव में कि आपको राधा रानी को टैक्स भरना होगा क्योंकि वो वृंदावनेश्वरी वो वृंदावन की रानी और हर रोज आपके गाय आकर उनके घास को खा रहे हैं तो आपको टैक्स भरना होगा और टैक्स ये है कि आप उसके चरणों में गिरो और उनको रानी के रूप में स्वीकार करो और वो कृष्ण को राधा रानी के पास ले गए और प्रेम के आंसुओं से राधा कृष्ण राधा रानी के चरणों में अपना सिर झुका दिया आंसुओं से स्नान करवा दिया और इस सुंदर कहानी से हम ये सीखते हैं कि प्रेम जो है जिसके प्रति प्रेम किया जाता है उसको जीत लिया जाता है कृष्ण मदन मोहन है वो कामदेव के मन को मोहित कर देते हैं श्री राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है उनका प्रेम जो है वो सबसे बड़े ईश्वरों को भी जीत लेता है सब जीतने वालों को भी जीत लेता है और भगवान चैतन्य महाप्रभु जो वो राधा हैं जो क्योंकि प्रेम को सबको ये प्रेम बांट रहे हैं वह नाम कीर्तन के द्वारा परिक्रमा चालू रखें मैं एक कहानी बताऊंगा दान निवर्तन कुंड हम उससे आगे बढ़ते हैं अन्नकूट क्षेत्र निवर्तन कुंड और अनियोर के बीच में हमारे आचरण के अनुसार ये कई मील है यहाँ पर है जब ब्रिजवासियों ने उन्होंने बड़ा सुंदर पर्वत बनाया था प्रसाद बनाया था गिरिराज जी के लिए कृष्ण की आज्ञा के अनुसार क्या आप कल्पना कर सकते हैं पांच मील का रास्ता है, पर्वत और नदियां पर प्रसाद सब अर्पण के, और गिरिराज ने सब खा लिया, एक क्षण में सब खा लिया और पुकारने लगे अनियोर अनियोर। इसका मतलब है कि मुझे और दो। कृष्ण को क्या चीज पसंद? कृष्ण असीमित था, और श्री चैतन्य चरितामृत ने बताया एक सुंदर कहानी है कि अद्वैत प्रभु एक बार चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में प्रसाद के लिए बुलाते जब वो जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु उनके घर में आए और उन्होंने देखा कि इतने सारे प्रसाद था। शांतिपुर में भी ऐसी लीला हुई थी, और उन्होंने देखा कि अद्वैत आचार्य उनके इतने बड़े बड़े प्रचुर मात्रा में प्रसाद, और सब विग्रह के सामने थे, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरे को एक एक पत्तल दो और थोड़ा चावल और सब्जी मैं ले लूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि कृष्ण ने ये सब खा लिया, और चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में हमें सिखा रहे थे कि हमारी सुख इसमें होना चाहिए कि कृष्ण आनंद ले रहे हैं उसमें, और ये हमारी परीक्षा है कि कितना हम कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद ये लिखते हैं, कई बार उन्हें बताया जब आप कृष्ण से प्रेम करते हो, जब आप कृष्ण को देखते हैं सुंदर उन्हें सुंदर तरीके से सजाए गए, तो आपको उनके अंदर कोई अपने आप को सजाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि आप बहुत खुश होते हैं कृष्ण को इस रूप में देख, और कृष्ण को और आपकी इच्छा की कृष्ण चाहते हैं कि अच्छे कस्ते बनते अच्छे पत्थर के तैयार रहते हैं। जब हम देखते हैं कृष्ण को अच्छा भोग अर्पण मिल रहा है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। मुझे याद है मैं पुजारी था, वो रूल था कि राजभोग ऑफरिंग के लिए 64 आइटम बनाए जाते हर साल में, 365 दिन हर रोज 64 आइटम बनाए जाते। देखो पुजारी से प्लेट बनाना पड़ता था, गौरनिताई के लिए एक प्लेट, गुरु के लिए राधा वृंदावन चंद्र जगन्नाथ बलदेव सुभद्र, और शालग्राम शीला की 5 प्लेट अर्पण करने, हर एक प्लेट में 64 आइटम। ज्यादा समय तक स्टैंडर्ड रहा नहीं, हमने कोशिश की, वह एक साल तक रहा 64 आइटम, बाकी समय 10-12 ऑफरिंग, दिन में 6 ऑफरिंग किया। मुझे अपने जीवन में याद है एक तरफ जानते हुए कि कृष्ण हर एक प्रश्न में सुंदर होता है, जो कुछ भी आपको वो अर्पण किया जाता है, हर राजभोग कचौरी समोसा मालपुआ, छोला सब्जी, 6 प्रकार की चटनी है, लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, संदेश, हलवा, ये देखते हैं कि कृष्ण सब खा रहे, हमें खुशी होती थी कृष्ण खा रहे। प्लेट बनाने से और बनाने खाने में और सब प्लेट सफाई करने में खाने का समय नहीं रहता है, कृष्ण खा रहे हैं। नहीं करना है। हमारे पास समय नहीं होता और इच्छा भी नहीं होती भोग करने। ऐसा प्रभुपाद जी की होशियारी, नए भक्त भेजे उनको कृष्ण की सेवा में लगा रहे और ऊंचा टेस्ट के लिए भी। मुझे याद आया कि प्रभुपाद इस समय बहुत गंभीर कर भागवत क्लास में आपको बोले आपके आदमचन से बहुत सुखी लग खुशी लग रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर लड़का लड़की के रूप में आप सब अमेरिकन युवक और युवतियों को आकर्षित करने के लिए और ये बहुत प्रसन्न लग रहे हैं और बहुत गंभीर हो गए। बोले भक्ति मार्ग में ये दो 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 पटरियां चल रही हैं। शास्त्र की विधि है और दूसरे अर्थ विग्रह की विधि, उनके लिए भोग बनाना, उनको भगवान को ड्रेस करना, उनके लिए गाना, आरती करना, श्रृंगार करना और भागवत मार्ग, और वो है श्रवण और कीर्तन का, हरि नाम जपा करना, श्रीमद् भागवत सुनना और गाना भगवत गीत, ये भागवत मार्ग है। उन्होंने बताया कि अगर आप ध्यान से आप मग्न नहीं श्रवण और कीर्तन करने में लगे नहीं रहेंगे, साधना अगर स्ट्रांग नहीं, एक दिन आएगा तब आप वो बहुत गंभीर होगे, तब आप विग्रह की तरफ देखकर सोचोगे, सोचने लगोगे कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे क्यों ये बोझा दे दिया है, गुरु महाराज मंदिर का ख्याल रखना, विग्रह की क्यों मेरे गुरु महाराज ने बोल दिया, ऐसा समय आ गया, क्योंकि जब तक हम अगर हम बहुत गंभीर नहीं श्रीमद् भागवत का श्रवण करने, नाम कीर्तन भक्तों के संग में करना तो खो देंगे, हम रुचि खो बैठे हैं। अर्थ विग्रह की सेवा बहुत दिव्य आशीर्वाद। रूप गोस्वामी बताते हैं कि पांच सबसे महत्वपूर्ण भक्ति के अंग है भक्तों का संग करना, नाम कीर्तन करना, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, तीर्थों का श्रवण, विग्रह की सेवा करना। अर्थ विग्रह जो है हमें एक व्यक्तिगत रूप से अवसर देता है जिससे हम भगवान की सेवा कर सकें, जिससे हम अर्थ विग्रह के रूप के प्रति आसक्त हो सकें, जो हमारा भगवान के प्रति आसक्ति जागृत होती सेवा के द्वारा, सफाई के द्वारा, भगवान को सजाने जो भी किया जाता है, चाहे हम बर्तन की सफाई कर रहे हैं, चाहे हम भगवान को आरती कर रहे हैं जन्माष्टमी के समय अर्धरात्रि में, कृष्ण हमारे प्रेम को स्वीकार करते हैं, हमारे इरादे को स्वीकार करते हैं। राधे श्याम प्रभु हमारे पुणे मंदिर के प्रेसिडेंट है और वहाँ पर वो सुंदर मंदिर बना रहे हैं और हर रोज मैं देखता हूँ यहाँ पर सब यात्रा में बर्तन धो रहे होते, और छोटे बर्तन नहीं है, बड़े बड़े बर्तन वहाँ पर बैठकर वो सफाई करते रहते। और मुरलीधर प्रभु जो एक बहुत सारे बम्बई में बड़े सर्जन है, जब बहुत सफल है वो मुंबई में, और हर रोज मैं उनको देखता हूँ अपने हाथ के घुटनों के बल, वो बर्तन के यात्रा में बर्तन की घिसाई कर रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ ये है ट्रांसेंडेंटल दिव्य स्तर पे कृष्ण भावना में, नीचे प्रेम जहाँ पर भी प्रेम जहाँ पर भक्ति। राजा प्रताप रूप है तो राजा थे बड़े, लेकिन कृष्ण महापुरुष हृदय को जीती और वो झड़ लगाने लगे। जो भगवान चैतन्य महापुरुष चाहते थे कि वो राजा भी बने रहे, सफाई कर रहे। जब आप पूरे राज्य के राजा भी कृष्ण आपकी पोजीशन नहीं देखते, वो ये भावना को देखते, व्यक्तिगत जो कि सब कुछ है। अनियोर में कृष्ण ने सब कुछ भोग स्वीकार कर और सब वापस दे दिए। अद्वैत आचार्य की हम कहानी बताएं, ऑफरिंग के कृष्ण ने तो बहुत प्रसन्न थे। कृष्ण ने मुझे कुछ थोड़ा सब्जी दे दो, अद्वैत आचार्य सब कुछ टेस्ट कर, जो कृष्ण ने बोले कि मैं संतुष्ट हूँ, मैं कितना खा सकता। अद्वैत आचार्य बोले कि आप कितना खा सकते हो मुझे पता है, द्वारका में 16,108 महल है और उनके रानी है जो बड़े बड़े चीज दे रहे हैं और सब खाने को आप तैयार हैं, सब खा रहे हैं। और गोवर्धन पूजा की आपने बड़े 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 पर्वत आपने स्वीकार कर लिए और आपने एक क्षण में सब खा लिया, और फिर आप और भी चाहते। और जगन्नाथ सैकड़ों पर पुजारी भगवान को हर समय भोग लग रहे और आप सब कुछ खा रहे हैं, ये तो बहुत थोड़ा सा योग्य में अर्पण कर रहे हैं, हमें पता है कि आप कितना खा सकते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा सा खाया, फिर अद्वैत आचार्य और देने लगे। महाप्रभु बोले कि मैं और कुछ नहीं खा सकता, ये कृष्ण है। एक बार एक कहानी के सन ने इतना खिलाया, इतना अच्छा प्रसाद खिलाया, चैतन्य महाप्रभु खाना बंद नहीं कर सके, इतने प्रेम के साथ अर्पण किया गया था। और अगले दिन उनके पुत्र उनको घर में बुलाए, शिवन सन के पुत्र ने बोला, और उनको सिर्फ दही और साथ में काली मिर्च और अदरक का पाउडर, और जो कि डाइजेशन के लिए पाचन के लिए अच्छा, क्योंकि बालक समझ गया कि चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कुछ खा लिया और भगवान को अपच भी मार, और इसलिए मैं उनको आयुर्वेदिक ऐसे भोजन दूंगा जो पाचन बढ़ाने वाले। तो नमकीन पैडी कोई खाना नहीं चाहता, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसको भी स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि किस उद्देश्य से अर्पण किया गया भगवान वही देखते हैं, ये भक्ति है। आप कृष्ण को कोई पर्वत अर्पण कर लाखों टन दे सकते हैं, और कृष्ण एक ही क्षण खा सकते हैं और बोल सकते हैं मुझे और दो, और कृष्ण को बड़ा फीस भी आप दे सकते हैं, और आपके प्रेम से आदान प्रदान करने के लिए और आपको गंभीर अपच हो सकती और तकलीफ हो सकती है, और फिर बाद में कोई दवाई भी मांग सकते। वो भोजन नहीं है, कैसे भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान कर, ये अन्नकूट क्षेत्र और वास्तव में नवंबर 3 को हम सुंदर ऑफरिंग बनाएंगे सैकड़ों सैकड़ों भक्तों को, सब मिलेगा और बनाएगा, तैयार रहना, बहुत शुद्ध करने, सब गोबर की सब आंखों में सब आए, लेकिन शुद्ध तपस्या के आंसू जो हृदय के, वो भोजन को एक विशेष फ्लेवर देंगे। एक अन्नकूट क्षेत्र के एक इलाके में ऑफरिंग किया जाए, जहाँ पर ब्रजवासी हमेशा अपना ऑफरिंग कर रहे हैं गिरिराज जी को, उस समय मैं आमंत्रित करूंगा, दो स्टेज पर मालती देवी माता जी और श्री प्रभुपाद जी की स्मृति बताने के, वो प्रभुपाद जी के गो पर्वत के पास प्रसाद बना रहे थे, इसलिए हम प्रसाद बनाने के लिए, और हम हमारे में से कई करते हूँ करने वाले, हम सारा भोग अर्पण करेंगे हजारों चीज गोवर्धन को ही पर्वत अर्पण, हम फोटो डायरेक्टली पर्वत को अर्पण किया जाएगा वहाँ पर, और हमारे पास बहुत सारे गार्ड होंगे, लकड़ी लेकर खड़े होंगे, जिससे कि वो प्रयास कर सकें जिससे बंदर को थोड़ी सभ्यता बनाए रखें, और पिछले साल हमने किया था, इसी बार तो बहुत अच्छा अनुभव, और इस साल में, और हम रिक्वेस्ट करेंगे मालती देवी से और गोवर्धन में कोई लीला बताएं, और फिर उसके बाद परम पूज्य सचिन नंदन स्वामी महाराज बतलाएंगे, और उनको फिर हमको डांसिंग कीर्तन में लगाएंगे।